वैदेही अपने केबिन में बैठकर काम कर रही थी। अब उसका ध्यान यशवर्धन सिंह की मीटिंग से हट चुका था और वो अपने काम में पूरी तरह डूबी हुई थी। लैपटॉप पर किसी केस को स्टडी करते हुए उसने बोला, पिछले 10 सालों में इस एरिया में बहुत सी लड़कियां गायब हुई हैं। पुलिस भी इस मामले में कुछ खास कर नहीं पाई है। जो भी लड़कियां गायब हुईं वो सभी बालिग थीं, तो अक्सर उन्हीं पर ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता था कि वो खुद की मर्जी से घर छोड़कर गई हैं। इस तरह लड़कियों का गायब होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे इस बारे में और भी पता लगाना होगा। वैसे भी इस एरिया में लड़कियों पर होने वाले क्राइम रेट कुछ ज़्यादा ही है। देव भी इस प्रोजेक्ट पर पिछले 1 महीने से काम कर रहा है। उसे भी यही लगता है कि यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया या कोई जानबूझकर ध्यान देना नहीं चाहता। वैदेही जिस देव की बात कर रही थी वो उसका असिस्टेंट था, जो किसी भी केस पर काम करने से पहले उस बारे में शुरुआती ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जुटाता था। वैदेही को अपने काम का अगला टारगेट मिल चुका था। अक्सर वो इसी तरह केस को स्टडी करती और फिर उस पर काम करके उसके तह तक पहुँचती। उसका काम बाकी रिपोर्टर से अलग था। मैं प्रतीक सर को बता देती हूँ कि मेरा अगला प्रोजेक्ट क्या होने वाला है। शायद इसके लिए मुझे कुछ दिनों के लिए वहाँ जाना पड़े, वैदेही ने खुद से कहा और अपना लैपटॉप उठाकर प्रतीक के केबिन की तरफ चल दी। जैसे ही प्रतीक ने कुछ देर बाद फिर से वैदेही को आते देखा तो उसके मन में एक उम्मीद जग गई थी। शायद वो यशवर्धन सिंह की प्राइवेट मीटिंग में जाने के लिए रेडी हो गई होगी। मुझे अच्छा लगा वैदेही कि तुमने अपना डिसीजन। प्रतीक ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उसे वैदेही के हाथ में उसका लैपटॉप देखा। क्या सच में कोई चांसेस नहीं है? 1% भी नहीं, वैदेही ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। उसे छोड़िए, उसके बारे में आज नहीं तो कल सब कुछ पता चल ही जाएगा। ये देखिए मेरे हाथ क्या लगा है। कौन सा तुम्हारे हाथ में कुबेर का खजाना लगा होगा? फिर से कोई केस लेकर ही आई होगी जिसे पैसों के दम पर दबा दिया होगा, प्रतीक ने बड़बड़ाते हुए कहा। जी बिल्कुल, ऐसे समझ लीजिए कि इस बार कुबेर का ही खजाना हाथ लगा है। कंडीशन सच में काफ़ी ख़राब है। लाओ मुझे दिखाओ। प्रतीक के कहने पर वैदेही ने अपना लैपटॉप उसके सामने कर दिया। वो वैदेही देव के इकट्ठे किए हुए न्यूज़ आर्टिकल की फ़ाइल पढ़ रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ जाने की परमिशन दे दूँगा? बोलते हुए उसने वैदेही को घूर कर देखा। क्यों नहीं, जब आप मुझे यशवर्धन सिंह की प्राइवेट मीटिंग में जाने की इजाज़त दे सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं? पागल मत बनो वैदेही, वो एक नॉर्मल सी मीटिंग थी और यहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मैं तुम्हें इतना बड़ा रिस्क उठाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दे सकता। रिस्क तो हर बार ही होता है, वैसे भी मैं अकेले कहाँ होती हूँ, हर बार देव होता है ना मेरे साथ। बिल्कुल भी नहीं, इस बार मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला, प्रतीक ने वैदेही को साफ इनकार कर दिया। अब तुम जा सकती हो। प्रतीक से ना सुनने के बावजूद भी वैदेही वहीं पर खड़ी रहीं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी प्रतीक सर। अब तुम इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर उतर आई हो, प्रतीक ने वैदेही की तरफ आंखें बरेर कर देखा। जब भी प्रतीक वैदेही को किसी खतरनाक न्यूज़ पर काम करने से रोकता तो वो उसे मनाने के लिए साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपना लेती थी। सर याद है ना कि आपने शपथ ली थी, आपने कहा था कि आप इस तरह के क्राइम के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाएंगे, इसी के लिए आपने ये न्यूज़ चैनल खोला था। मैं बरखा का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन उसके साथ जो भी हुआ तब बोलने वाला कोई नहीं था। मैं नहीं चाहती कि इन लड़कियों के साथ भी वही सब हो। तुम हर बार मेरी बहन का नाम लेकर मुझे इमोशनली वीक कर देती हो। वो तुम्हारी फ्रेंड थी, इस वजह से तुम्हें उसके बारे में सब पता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर बार उसका हवाला देकर मुझसे कुछ भी करवा लो। मैंने एक बार कह दिया ना, नहीं मतलब नहीं। बरखा के लिए भी नहीं, वैदेही ने एक आखिरी कोशिश की। प्रतीक ने उसकी बात पर ना करते हुए कहा, इस बार बरखा के लिए नहीं बल्कि वैदेही के लिए ना। तुम मेरी बहन की दोस्त ही नहीं, मेरी बहन की तरह हो। आज बरखा जिंदा होती तो मैं उसे इस तरह के काम पर कभी नहीं भेजता। तो जिद मत करो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें, बोलते हुए प्रतीक रुक गया। क्या काम से निकाल देंगे? वैदेही ने आंखें बड़ी करके पूछा। प्रतीक ने उसकी बात पर हां में सिर हिलाया। वैदेही ने आगे कुछ नहीं कहा और लैपटॉप उठाकर वापस अपने केबिन की ओर बढ़ने लगी। वो दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि वापस प्रतीक की तरफ मुड़ी और बोली, मैं फिर भी जाऊंगी, आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मैं अकेली चली जाऊंगी, कहकर वैदेही वहां से चली गई। उसके जाने के बाद प्रतीक ने अपने टेबल पर हल्का सा पंच किया। ये लड़की अपनी जिद कब छोड़ेगी? मैंने उसे जॉब Page 3 की पार्टीज कवर करने के लिए दी थी, ना कि ये हैकिंग करने के लिए। 2 महीने वहाँ की पार्टीज कवर करने के बाद इसने अपना डिपार्टमेंट कब बदला मुझे खुद ही पता नहीं चला। प्रतीक को गुस्सा आ रहा था, उसने पानी पिया और खुद से कहा, काम डाउन प्रतीक, इस ऑफिस और चैनल के मालिक तुम हो, तुम्हारी इजाज़त के बिना वैदेही चाफी नहीं सकती। अगले ही पल उसके भाव गंभीर हो गए और उसने पैर पटकते हुए बोला, ये लड़की मेरी बात क्यों नहीं सुनती है? पता नहीं इसे इस तरह के आर्टिकल्स मिल कहाँ से जाते हैं। प्रतीक खुद को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा था, जबकि अंदर ही अंदर वो इस बात को अच्छे से जानता था कि वैदेही ने एक बार ठान लिया तो वो अपने कदम पीछे नहीं लेने वाली थी। प्रतीक से बात करके वैदेही अपने केबिन में आ चुकी थी। वो उसके मना करने के बावजूद इस आर्टिकल पर काम कर रही थी। रिसर्च करते हुए उसकी नज़र एक दूसरे आर्टिकल पर पड़ी। उसे पढ़ते हुए वैदेही की आंखों से आंसू बहने लगे और वो किसी दूसरी दुनिया में जा चुकी थी। एक छोटी सी बच्ची अपने हाथ में पिंक कलर का टेडी बेयर लिए टेबल के पीछे छिपी हुई थी। उसने अपने आंखों के आगे टेडी बेयर ले रखा था ताकि अपने सामने चल रहे दृश्य को वो देख ना सके, लेकिन उसकी मासूमियत ये नहीं जानती थी कि आंखें ढकने से कानों में पड़ रहे स्वर को वो सुनने से खुद को नहीं रोक सकती थी। सामने उसकी माँ के जोर जोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं आगे से ध्यान रखूंगी, मुझे माफ़ कर, औरत रोते हुए जैसे तैसे अपने शब्दों को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना गर्म खाना परोसने की? सामने से आदमी के चिल्लाने की आवाज़ आई जो कि उस लड़की का पिता था। मेरी जीभ जल गई। अरे सारे दिन घर पर बैठकर करती क्या हो जो अपने पति को दो वक्त का खाना भी ठीक से नहीं डाल सकती? मैं वहाँ ऑफिस में दिन रात काम करता रहता हूँ ताकि तुम दोनों को एक अच्छी लाइफ दे सकूँ। बदले में मुझे क्या मिला? तुम तो मुझे दो वक्त का खाना भी ठीक से नहीं दे सकती। प्लीज़ धीरे बोलिए, वैदेही सुन लेगी, औरत रोते हुए बोली। सुन लेगी तो सुनने दो, तुम मुझे एक बार स्तुति नहीं हो पाई। अब क्या चाहती हो कि मैं उस लड़की को अपने सिर बिठा कर रखूं ताकि तुम्हारी तरह कल को वो भी अपने पति के साथ यही सब करे? आदमी ने चिल्लाते हुए कहा। औरत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो बस रोई जा रही थी। उसकी इस हरकत ने आदमी के मन में और चिढ़ पैदा कर दी थी। तुम मेरा दर्द कभी नहीं समझ सकती। उसने अपनी बात ख़त्म भी नहीं की थी कि उसे कुछ सूझा और फिर वो आगे बोला। क्यों नहीं समझ सकती? तुम्हें भी तो पता चले गरम गरम खाना खाने पर कैसा महसूस होता है। वो आदमी गुस्से में खाना उठाकर गया और उसे ओवन में डालकर गरम करने लगा। जब उसे लगा कि खाना पूरी तरह खोल चुका है तो वो बाहर लेकर आया और उसे डाइनिंग टेबल पर रखा।
उसके बाद वो उस औरत का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल के पास लेकर गया और उसे ज़बरदस्ती वो गरम गरम खाना खिलाने लगा। आह! खाना गरम होने की वजह से औरत के मुँह से चीख निकली। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ख्याल रखूँगी। अब पता चला कितना दर्द होता है। मैं तुम्हारी तरह बेरहम नहीं हूँ जो तुम्हें गरम खाना खिलाऊं। मेरी जगह कोई और होता तो ये पूरा खाना तुम्हारे गले में उड़ेल देता। आदमी ने अपनी गलती पर पर्दा डालते हुए सफाई दी और वहाँ से चला गया। उसकी जाते ही लड़की दौड़कर बाहर आई और अपनी रोती हुई माँ को पास पड़ा जूस का ग्लास दिया। औरत ने उसे एक घूंट में निगल लिया ताकि उसके अंदर की जलन कुछ कम हो सके। अपने केबिन में बैठी हुई वैदेही का फ़ोन बजा और इसी के साथ उसका ध्यान टूट गया। उसने अपने आंखों से आंसुओं को साफ किया और लैपटॉप पर फिर से एक नज़र डाली जिसमें किसी औरत को दहेज के लिए जिंदा जलाए जाने की खबर लिखी हुई थी। नोट: कहानी में दिखाए गए दृश्य सीन की डिमांड होने की वजह से लिखे गए हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक कानूनन अपराध है जिसे किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हो सके तो अपने आसपास हो रहे इस अपराध को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कीजिए। उम्मीद है इस दृश्य के जरिए किसी की भी भावनाओं को क्षति नहीं पहुंची हो।